مدوں کلام سی یہ کلام خدا دے نام سی، یہ کلام خدا سی، ایہو ہی مدوں خدا دے نام سی، یہ کلام مجسم ہوئے تے فضل تے سچائی نال بھرپور ہو کے ساڈے کول ڈیرا کیتا تے اساں اجیہا جلال دیکھا جس طرح پاک تے اکلوتے دا جواب۔ پاک کلام دا اے حصہ تسی www.kalamekhuda.com تے سنو گے۔
خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے پاک کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے کھول چکے ہیں۔ خداوند تو ہماری پاک روح کے ذریعے سے رہنمائی کر اور ہمارے اس اقرار کو اپنے حضور میں قبول کر۔ خداوند کے ہم اپنے ذہن سے، خداوند اپنی عقل سے، اپنے علم سے تیرے پاک کلام کی باتوں کو سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ پاک روح کے ذریعے سے ہمارا استاد ہو، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا استاد ہے اور ہم خداوند یسوع مسیح کو رول ماڈل بناتے ہوئے اسے سیکھتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا استاد ہے۔ خداوند نے ہمیں دعا سکھائی تھی اور دعا کا ایک فقرہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈ اس ناٹ انٹو ٹیمپٹیشن بٹ ڈیلیور اس فرام ایول، کہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا یا شیطان سے بچا۔ دیز آر دا ڈیز آف لینس اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو شیئر دا میسج وچ وی گیٹ فرام دا ہولی بائبل از دا ٹیمپٹیشن آف جیزس کرائسٹ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں، ان انجیلوں میں خداوند یسوع مسیح کی جو آزمائش ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ جو زندگی ہے، یہ چاروں انجیل اس کا بیان کرتی ہے اور ان چاروں انجیل میں ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور آج جس بات پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش۔ آزمائش یہ انسانی زندگی میں اور ہر انسان کی زندگی میں ایک بڑا کڑا وقت ہوتا ہے۔ It brings the choices before us. We have to choose one thing. یہی آزمائش ہے کہ میں پانی اس میں سے پیوں یا اس میں سے پیوں، ایک آزمائش ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، آزمائش کھڑی ہو گئی کہ چرچ میں آنا چاہیے یا کسی اور جگہ آنا چاہیے۔ صدیوں پہلے خداوند یسوع مسیح آج کے دن کا جو یہ قصہ ہو رہا ہے اسے پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی مسز کو کل کہا کہ جب میں گلف میں تھا، آئی واز ریزائننگ ان اے ہوٹل اینڈ وی نو دیٹ گلف از میڈ آن دا ہیپ آف سینڈز، یہ ریت کے اوپر بنا ہوا ہے اور جہاں ریت ہے وہاں کبھی سمندر تھا۔ اور میں نے اپنی مسز کو بتایا کہ میں جب ہوٹل میں تھا تو اس کمرے میں اس کی جو کوریڈور تھی وہاں میں دعا کرتا تھا۔ میں نے کہا خداوند تو جانتا تھا یہاں سمندر ہوتا تھا کبھی، کہ یہاں سمندر ختم ہوگا، ریت کے ٹیلے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں پر ایک ہوٹل بنے گا اور ہوٹل میں ایک کمرہ ہوگا جس میں تو مجھے رکھے گا اور میں مقرر وقت پر یہاں پہنچ چکا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کو ہماری طبیعتوں کا، ہمارے آنے والے دنوں کا پتہ ہے اور اسی لیے خداوند نے جب دعا سکھائی تو اس نے یہ سکھایا کہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ آزمائش کہاں سے نکلتی ہے؟ इंग्लिश में मैंने एक फिक्र बोला कि डिलीवर अस फ्रॉम ईवल. ईवल का मतलब बुराई के साथ साथ शैतान भी होता है, इब्लीस भी होता है. इब्लीस की तरफ से जिंदगी नहीं निकलती है, इब्लीस की तरफ से हलाकत या आजमाइश ही निकलती है. वो इंसान को ऐसे चक्कर में डालता है कि उसे समझ नहीं लगती है कि उसने क्या करना है, और बहुत दफा वो खुदा की हजूरी को छोड़कर किसी और जगह चला जाता है जहां के उसे नहीं जाना चाहिए, या वो फौकियत देता है खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की इबादत, खुदावंद के घर पर किसी दूसरी जगह को वो फौकियत देता है. बाज़ोकात आजमाइश का आलम यह होता है कि हम थोड़ी सी स्मार्टनेस भी करते हैं. अगर खुदावंद ने हमें जिम्मेदारी एक जगह पर करने के लिए दे रखी है, हम सौदेबाजी करते हैं और जिम्मेदारी का वो वक्त सुबह किसी और जगह पर गुजारकर खुदा के हजूर में अपने सौदे को, अपने तराजू को बराबर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की जगह वो नहीं. जिम्मेदारी की जगह ये है जहां पर आप आजमाइश का शिकार हुए हैं. मेरी खिदमत अगर आज इस जगह पर है और इस जगह की बजाय मैं किसी और जगह, दूसरी जगह का इंतखाब करता, या मैं यहां पर आने की बजाय सुबह किसी और जगह पर होता और फिर अपनी दिल पसंद जगह पर यहां आकर अपनी ड्यूटी को और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने की बजाय किसी और जगह पर होता, तो फिर ये सौदेबाजी थी. इब्लीस हमारे जहन में, हमारे दिल में मुख्तलिफ तरह की जो चालाकियां हैं, मुख्तलिफ तरह की जो चॉइसेस हैं वो डालता है, लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं वाइस की किताब की अक्सर आयत पांचवें बाब में पढ़ता हूं कि तू खुदा के हजूर आए. हम वाइस की किताब निकालें और उसका पांचवां बाब, और मेरी दरखास्त है कि आप में से कोई भी वो पढ़े वाइस की किताब उसका पांचवां बाब और उसकी चौथी आयत. जरा ऊंची आवाज में मेहरबानी के साथ जो भी पढ़ना चाहे, मेरी दरखास्त है कि चौथी और पांचवी आयत. शुक्रिया. ये एक वार्निंग है, खबरदारी है. अगर मैं यहां पर इस जगह पर, मन्नत का मतलब है किसी बात का इरादा कर सकूं कि मैंने वो यहीं पर पूरी करनी है, और यहां पर पूरी करने के वक्त को किसी और जगह जाकर गुजारूं, तो यहां पर लिखा है कि वो अहमक से खुश नहीं है, मैं फिर अहमक हूं. क्योंकि मेरी मन्नत, मेरा जो कसद था, जो मेरा इरादा था, वो ये था कि मैं इस वक्त को यहां पर ही सर्व करूंगा, लेकिन अगर मैं इस वक्त को सौदेबाजी की नजर करके किसी और जगह, किसी और वक्त में जाता हूं, यहां आने की बजाय किसी और जगह जाता हूं, तो यहां पर लिखा है खुदावंद कहता है कि तू अपनी मन्नत को पूरा कर, जहां पर तूने इरादा किया है उसी जगह पर उसी हिसाब से पूरा न कर. और पांचवी आयत में लिखा है तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है तू मन्नत माने और अदा ना करे. ये एक वार्निंग है कि तेरा मन्नत बेहतर है कि तू जिम्मेदारी कबूल ना कर. मन्नत का मतलब है जिम्मेदारी कबूल करना. यहां पर ये जो हवाला आज आपके सामने है पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब, ये टकराव है खुदावंद यीशु मसीह का और ईवल का, इब्लीस का टकराव है. और खुदावंद यीशु मसीह ने जब किसी आजमाइश से गिरने की बजाय इस ईवल का और इस इब्लीस का मुकाबला किया, तो क्या लिखा है कि फिर फरिश्ते उसकी आकर खिदमत करने लगे. वाइज की किताब में लिखा है कि वो अहमकों से खुश नहीं है, लेकिन मत्ती की अंजील कहती है कि जब कोई आजमाइश पर गलबा हासिल करता है तो आम इंसान नहीं, फरिश्ते आकर उसकी خدمت کرتے ہیں. خدا کا پاسبان ہونے کی صورت میں خدا دل پر بوجھ ڈالتا ہے اور ضروری ہے کہ اس بوجھ کو شیئر کیا جائے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے جی آپ کسے سنا رہے ہیں, وہ تو یہاں نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے, لیکن جو ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ آگاہی کریں. یہ آزمائش کبھی ان کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے, میری زندگی میں بھی آ سکتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو منت مانتا ہے وہ جو اسے پورا نہیں کرتا وہ احمق ہے. اور خداون کی جو ابلیس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے, خداون آزمائش پر غالب آیا اور لکھا ہے کہ فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے. آئے ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ یہ آزمائش کیا ہے. واٹ از اے ٹیمپٹیشن؟ ٹیمپٹیشن کے لیے اردو میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آزمائش ہے, یہ انسان کے سامنے مختلف طرح کی چوائسز پیش کر دیتی ہے کہ میں یہ کروں یہ نہ کروں یا اس کی بجائے میں یہ کروں. یہ ایک آزمائش ہے, دھوکہ دہی والی بات چیت ہے. اور اس کے لیے یونانی کا ایک لفظ ہے پیرازین, اور پیرازین کا مطلب ہے ٹیسٹ, اور ٹیسٹ مور دین ٹیمپٹیشن. یہ ٹیمپٹیشن سے تھوڑا بڑھ کر لفظ ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سے اسے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے, اگر آپ نکال چکے ہیں تو مہربانی کے ساتھ ذرا اونچی آواز میں پڑھیں. شکریہ. خدا نے ابراہیم کو آزمایا, دس از اے ٹیسٹ, یہ امتحان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا امتحان نہیں ہے جو کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے والا امتحان ہے, لیکن یہاں پر اس امتحان کا مطلب ہے کہ خدا, گاڈ وانٹڈ ٹو ٹیسٹ دا فیتھفلنیس آف ابراہیم. خدا ابراہیم کی فیتھفل کو دیکھنا چاہتا تھا, جاننا چاہتا تھا. اینڈ ان دا سیم وے گاڈ فادر وانٹڈ ٹو ٹیسٹ دا فیتھفلنیس آف ہز سن جیزس کرائسٹ. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. آزمائش خدا یسوع مسیح کو جس آزمائش کا سامنا ہے وہ تو ایک ٹیسٹ ہے. ہم زبور میں گاتے بھی ہیں 66 زبور میں, تایا توں اجایا سانو جیوں روپے نو تایا. یہ جو روپے ہوتے ہیں, جو کرنسی ہوتی ہے, اس کو تایا جاتا ہے, مختلف بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے, اور پھر ہی وہ ٹھن ٹھناتا ایک پیتل کا یا لوہے کا جو سکہ بن کر نکلتا ہے. خداوند آزمائش کے ذریعے سے ہمیں تاتا ہے, ہمیں پکا کرتا ہے. وہ ہماری دیانتداری کا, ہماری محبت کا, ہماری وفاداری کا وہ امتحان لیتا ہے, اور اس لیے لیتا ہے تاکہ ہم پکے ہوں, بہ نہ جائیں, موجوں کی طرح بہ نہ جائیں, لیکن ہم پکے ہوں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش انسان پر ایک گناہ ہے, اور آزمائش جو ہے وہ ایک بری بات ہے, انسان کی یہ سزا ہے. لیکن یہ انسان کی سزا نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کو انسان بننے کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے جلال ہے. یہ انسان کو بہتر سے بہتر انسان بناتا ہے. آج کل روزوں کے دن ہیں, اور آپ کو جو غیر مسیحی روزے ہیں ان کا بھی پتہ ہے, ہمارا تعلق اسلامی ملک سے ہے, کہ جب روزوں کا وقت آتا ہے تو مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, ہوٹل بند ہو جاتے ہیں, کھانے پینے والی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ روزہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ تھوڑا سا انسانی سمجھ والا روزہ ہے, रोना ये है कि मेरे सामने ये रोटी पड़ी है, मुझे भूख लगी है और मैं इसे ना खाऊं, अपने ऊपर जबर करूं। जब ये चीज है ही नहीं है तो फिर तो एक तरह की आजमाइश नहीं है, फिर तो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही है, मैंने भूखे ही रहना है। लेकिन अगर ये चीज है और मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और ये मेरे सामने है तो ये आजमाइश है। मैंने अपने ऊपर इस चीज को का इनकार करके जबर करना है, ये आजमाइश है। और हम यही बात यहां पर खुदावंत की जिंदगी में देखते हैं। उसकी जिंदगी में जब ये आजमाइश आई, मुख्तलिफ चीजें उसके सामने आई जिनमें रोटी भी थी, कि तू इन पत्थरों को कह के वो रोटी बन जाए। और खुदावन कर सकता था, भूख से लगी थी। 40 दिन को एक दो दिन की बात नहीं है, 40 दिनों की बात है, प्यास का मसला था। खुदावन ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन खुदावन ने कहा कि नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। ये आजमाइश है और ये टेस्ट है। ये जो टेस्ट होता है, ये सिर्फ उसी का टेस्ट नहीं होता जो कि टेस्ट दे रहा होता है। आप इंटरव्यू जब देते हैं तो इट डजंट मीन दैट ओनली यू आर गिविंग इंटरव्यू, बट द पर्सन हु इज गिविंग यू इंटरव्यू ही इज ऑल्सो अंडर इंटरव्यू। आप उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आप भी उसे जांच रहे होते हैं कि वो क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, वो क्या दे सकता है, कहां तक जा सकता है। बिल्कुल यहां पर भी हम देखते हैं कि जब ये इबलीस खुदावंद के सामने आ मौजूद हुआ तो ये खुदावंद की आजमाइश नहीं थी बल्कि ये इबलीस की भी आजमाइश थी। और बिलाखिर क्या हुआ कि इबलीस जो था वो भाग गया। खुदावन ने कहा कि दूर हो, और इबलीस को झिड़का और इबलीस जो था वो भाग गया। किसी आम आदमी की आजमाइश नहीं होती है। ईवल की आजमाइश क्या होगी, क्योंकि वो तो पहले ही उस तरह के शबरूस में रहता है। आजमाइश हमेशा उस शख्स की होती है जो कि बपतिस्मा याफ्ता होता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के इस वाक्य को पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश उस वक्त हुई जबकि वो पानी का बपतिस्मा लेकर निकला था। आप ये मत्ती की अंजील का चौथा बाब पढ़ें, वहां लिखा है कि खुदावंद की आजमाइश जो थी उसका वक्त जो था उसके बपतिस्मे के फौरन बाद खुदावंद की जो आजमाइश है वो शुरू हो जाती है। जब खुदावंद बपतिस्मा लेकर पानी से निकला, चाहिए तो यह था कि खुदावंद अपनी खिदमत के काम को जारी रखता, लेकिन हम मत्ती की अंजील उसका तीसरा बाब पढ़ते हैं और यहां पर क्या लिखा है, 16वीं आयत में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने यानी कि आसमान खुल गया, खुदा के उसने रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। और फिर चौथे बाब में फौरन हम पढ़ते हैं कि रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए। आजमाइश हर उस शख्स की होती है जो कि खुदावंद में होता है, जिसे जिस पर खुदावंद की मोहर बपतिस्मे के जरिए से लगी होती है, उसकी आजमाइश होती है। फिर हम यहां पर यह भी देखते हैं कि आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह की उस वक्त भी हुई जबकि वो लोगों के बीच में नहीं था, जबकि वो शहर में नहीं था, जबकि बहुत सारे लोग थे नहीं थे, बट जीसस वॉज अलोन इन द डेजर्ट, देन ही वॉज टेम्प्टेड। फर्स्ट ही वॉज tempted right after his baptism. The second, when he was alone in the wilderness, in the desert. हमारे लिए भी, हम जो कि बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं, हम जो कि ईमानदार हैं, अकेलापन हमारे लिए बड़ा कड़ा वक्त होता है। और एक वो जो आसमानी वाला है वो मौजूद होता है। देन अगेन खुदावंद यीशु मसीह कब आजमाया गया? When he was hungry, that time when he was alone, or after his baptism, and the third thing when he was hungry, जब वो भूखा था, हमारी भूख बसा औकात यीशु को छोड़ने पर मजबूर करती है। अखबारों में खबर आती है फलां शख्स ने फलां खातून ने यीशु को छोड़ दिया, और उसके पीछे बहुत दफा गुर्बत के आसार होते हैं। हमारी भूख हमारे कड़े वक्त जो हैं वो हमारी आजमाइश और अबलीस का जो मौका है वो बन जाते हैं। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश से एक और बात भी सीख सकते हैं कि बाज़ औक़ात हम आग से खेलते हैं। हम समझते हैं कि नहीं अबलीस दी कड़ी गल है, दो चार दिन दुआ मंगागा रब कुवत देगा तो मैं ठीक हो जावांगा। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि सिगरेट का पहला कश जो है वो हमें चेन स्मोकर बना देता है। बुराई की छोटी सी शुरुआत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा गुनहगार बना देती है, और इसीलिए कहा जाता है कि बुराई को शुरू ही से दफन कर देना चाहिए। हम शैतान को अबलीस को बाज़ू का समझते हैं कि नहीं ये मेरे पास कुव्वत है मेरे पास कुदरत है, और हम उसके साथ इबलीस के साथ बुराई के साथ शब रोज गुजारना शुरू कर देते हैं, और ऐसा कि जो अबलीस है वो हमें पूरी तरह अपने कब्ज में कर लेता है। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो कि हम आज के इस हवाले से सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान से कहा, जो कि एक बड़ा कवि दुश्मन है जिसमें बड़ी ताकत पाई जाती है, लिखा है कि यीशु मसीह से कहा ऐ शैतान दूर हो, मत्ती चौथा बाब दसवीं आयत, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आज इबादत का दिन है, आज खुदावंद के घर में आने का दिन है, आज उस मन्नत को जो कि हमने पूरी कर रखी है उसे पूरा करने का दिन है। खुदावंद एक मन्नत लेकर आया था, खुदावंद एक मकसद लेकर आया था, अबलीस ने उसे उसके मकसद से हटाने की कोशिश की, खुदावंद ने उस अबलीस का मुकाबला किया। खुदावंद ने कहा कि ऐ शैतान दूर हो, और लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आगे खुदावंद किसका अजर मिलता है, लिखा है तब इबलीस उसके पास से चला गया, शैतान भी भाग गया, खुदावंद ने डांटा शैतान भाग गया, और आगे लिखा है कि देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मेरे असीसों ये कुवत हमें उसके बेटे खुदा के बेटे यीशु की तरफ से मिलती है। हमें इस कुवत को इस्तेमाल करने का पता ही नहीं है। मैं बड़ा कवि हूं, आप बड़े कवि हैं, आप बड़े कुवत वाले हैं, आप बड़े कुवत वाले हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है तो ये है कि हम इस कुवत का इस्तेमाल जानते ही नहीं है। खुदावंद हमें इस कुवत का इस्तेमाल सिखा रहा है। खुदा लिखा है यीशु मसीह का शैतान दूर हो, हम इस कुवत के जरिए से शैतान को भगा सकते हैं, और वो वादा जो कि हमने खुदावंद के घर में खिदमत के लिए किया है उसे पूरा कर सकते हैं। और लिखे कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। बसा औकात क्या कहते हैं कि मैं तो डूबा हूं सनम तुझको भी, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हम खुद भी अपनी मन्नतों को पूरा नहीं करते हैं और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलते बनते हैं, और हम खुदावंद के डबल कर्जदार हो जाते हैं। खुदावंद से सुने हमें दुआ सिखाई कि तू हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। हम इस दुआ को रोज पढ़ते हैं, हर इबादत में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि हमने पढ़नी है, लेकिन लफ्जों पर गौर नहीं करते हैं। ये लफ्ज यहां से निकलते हैं, यहां से नहीं निकलते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि तू अपनी मन्नत को जो कि तूने खुदा के लिए मानी है पूरा कर, लेकिन उस मन्नत को पूरा हम किसी और जगह पर जाकर करते हैं। और फिर हम ये तो करें कि खुदावंद हमें बरकत देगा, खुदावंद हमें प्रॉस्पर करेगा, फलाएगा, हम फूलेंगे फलेंगे, हो नहीं सकता है। खुदावंद का कलाम तौबा की दावत देता है और खुदावंद का कलाम हमें खबरदार भी करता है। आए हम खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों में जगह दें और हम वो कुवत जिसके तहत यीशु ने अबलीस को डांटा, शैतान पर गालिब आया, आजमाइश पर गालिब आया, हम खुदावंद से वही खिदमत और वही जो कुवत है वो हासिल करें। और उसका नतीजा ये भी है कि खुदा के फरिश्ते, इंसान नहीं लेकिन खुदा के फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू जिंदगी के हर तरह के मौके के लिए अपने पाक कलाम को हमारी तरबियत और रहनुमाई के लिए खोलता है। खुदावंद हम इकरार करते हैं कि बहुत दफा हम आजमाइश का शिकार हो जाते हैं और बहकर दूर चले जाते हैं, लेकिन खुदावंद तू अपने हाथ खोले रखता है ताकि जब हम वापस आए तो तू हमें गले लगाए। खुदावंद तू हमें उन वादों पर कायम रहने का फजल दे जो कि हम तेरी हजूरी के एहसास के साथ तेरे साथ बांधते हैं। खुदावंद तू हमारी सारी होशियारियों से, चालाकियों से वाकिफ है। तेरा पाक रूह हमारे दिल और हमारे दिमाग के एक एक गोशे से वाकिफ है। हम इकरार करते हैं खुदावंद हमें संजीदगी की जरूरत है जो कि सिर्फ तेरी तरफ से मिलती है। खुदावंद हमें ऐसी होशियारी की जरूरत नहीं है जो कि हमें फरिश्तों की खिदमत से दूर कर देती है। खुदावंद आसमानी बाप आज के कलाम को हमारी जिंदगियों में कसर से काम करने दे। यीशु नाम का वसीला लेकर मांगते हैं, आमीन।